नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। लोकसभा चुनाव के कल के सातवें और अंतिम चरण के मतदान की तैयारियां पूरी। केंद्र ने सूखे की स्थिति पर महाराष्ट्र और तमिलनाडु सहित 6 राज्यों को परामर्श जारी किया। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 1 आतंकवादी ढेर। भारत ने अफगानिस्तान में आर्थिक विकास और शांति प्रक्रिया को पूरा समर्थन दिया और ऑस्ट्रेलिया में नई संसद के लिए आज मतदान। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। लोकसभा चुनाव के सातवें और आखिरी चरण के मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस चरण में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 59 निर्वाचन क्षेत्रों में कल वोट डाले जाएंगे। सातवें चरण में उत्तर प्रदेश और पंजाब में 13-13, पश्चिम बंगाल में 9, बिहार और मध्य प्रदेश में 8-8, हिमाचल प्रदेश के सभी 4, झारखंड में 3 और केंद्र शासित चंडीगढ़ में एकमात्र संसदीय सीट के लिए मतदान होगा। 59 में से 50 सीटों के लिए चुनाव प्रचार कल शाम समाप्त हो गया। पश्चिम बंगाल के 9 निर्वाचन क्षेत्रों में मंगलवार को भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो के दौरान हिंसा के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने बृहस्पतिवार रात 10 बजे प्रचार अभियान समाप्त करने के आदेश दिए थे। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने सुचारू मतदान के लिए व्यापक प्रबंध की खबर दी है।
मध्य प्रदेश में चिलचिलाती गर्मी के कारण चुनाव आयोग ने सातवें और अंतिम चरण के मतदान के लिए कई जिलों में बीट द हीट अर्थात गर्मी की छुट्टी कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत इन जिलों में मतदान केंद्रों पर कतार में खड़े हर मतदाता के लिए छाया की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा मतदाताओं के लिए बैठने की उचित व्यवस्था, ठंडा पानी, नींबू पानी और छाछ की व्यवस्था भी होगी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
शिमला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश में कल मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने सभी प्रबंध पूरे कर लिए हैं।
राज्य में अगले 4 दिन मौसम विभाग द्वारा खराब मौसम की भविष्यवाणी को देखते हुए सभी दूरस्थ पोलिंग पार्टियों को पहले ही रवाना कर दिया गया है। चुनाव विभाग द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों के लिए चुनाव संबंधित सामान पहुंचाने के लिए बीएसएफ का हेलीकॉप्टर, पॉटर और खच्चर को उपयोग में लाया जा रहा है। वहीं बड़ा बंगाल क्षेत्र में खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर की उड़ान न भर पाने से पोलिंग पार्टियों को बैजनाथ से रोड द्वारा रवाना किया गया है। राज्य में कल होने वाले मतदान के लिए 46,000 चुनाव कर्मियों को लगाया गया है। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
चुनाव परिणामों की लगातार 24 घंटे ताज़ा और विश्वसनीय खबरें 23 और 24 मई को समाचार सेवा प्रभाग के विशेष जनादेश 2019 कार्यक्रम पर।
देश के कोने कोने से आकाशवाणी संवाददाता बताएंगे लोकसभा और 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों का ताज़ा हाल।
स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञ करेंगे चुनाव नतीजों का विस्तृत और गहन विश्लेषण। आप इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हमारे FM गोल्ड चैनल और अन्य चैनलों पर सुन सकते हैं। ये प्रसारण YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा।
नवीनतम परिणामों के लिए हमारी वेबसाइट www.newsonair.com देखें और फॉलो करें हमारा ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi।
पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि निर्वाचन आयोग ने मतदान के दौरान हिंसा से निपटने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं।
स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए राज्य पुलिस के अलावा केंद्रीय बल की 676 कंपनियां भी तैनात की गई हैं। केवल कोलकाता में केंद्रीय बलों की 147 कंपनियां तैनात हैं। किसी अप्रिय घटना से निपटने के लिए 444 त्वरित कार्रवाई दलों को तैयार रखा गया है। अंतर्राज्यीय सीमा और बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। बाहरी लोगों के प्रवेश को रोकने के लिए सुंदरबन के विभिन्न द्वीपों पर नौकाओं से नजर रखी जा रही है। कोलकाता से अरिजीत चक्रवर्ती की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
लखनऊ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में अंतिम चरण के मतदान की तैयारियां पूरी हो गई हैं।
पोलिंग पार्टियां ईवीएम मशीनों और चुनाव सामग्री के साथ कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना की जा रही हैं। दूसरे राज्यों और जिलों से लगी सीमाओं को सील कर दिया गया है और सुरक्षा बल सभी नाकों पर वाहनों की जांच कर रहे हैं। खास निगरानी सोनभद्र जिले में रखी जा रही है जिसकी सीमाएं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से मिलती हैं। सशस्त्र सीमा बल के जवान भी नेपाल से लगी सीमा पर व्यापक जांच पड़ताल कर रहे हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
लोकसभा और विधानसभा चुनाव परिणामों पर समाचार सेवा प्रभाग का विशेष जनादेश 2019 कार्यक्रम उत्तर से लेकर दक्षिण तक।
आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से आरके रैना,
दिल्ली से आनंद कुमार,
लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी,
हैदराबाद से लक्ष्मी,
पूर्वोत्तर से पश्चिम तक।
आकाशवाणी समाचार के लिए ईटानगर से मैं राकेश डोले,
पटना से केके लाल,
अहमदाबाद से योगेश पंड्या।
देश भर से आकाशवाणी संवाददाता बताएंगे विश्वसनीय और ताज़ा हाल, विशेषज्ञों द्वारा चुनाव परिणामों का विस्तृत और गहन विश्लेषण। 23 मई सुबह 7 बजे से 24 मई रात 11 बजे तक आकाशवाणी के FM गोल्ड और अन्य चैनल पर।
आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने लोकसभा और चार राज्यों के विधानसभा चुनाव के ताज़ा और प्रामाणिक परिणामों के प्रसारण के व्यापक प्रबंध किए हैं। देश का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क आकाशवाणी पहली बार लगातार 40 घंटे विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा। आकाशवाणी समाचार 23 मई सुबह 7 बजे से 24 मई रात 11 बजे तक हिंदी और अंग्रेजी में द्विभाषीय कार्यक्रम विशेष जनादेश 2019 प्रस्तुत करेगा। स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ परिणामों का पूर्ण और सारगर्भित विश्लेषण करेंगे। इस कार्यक्रम को आकाशवाणी के FM गोल्ड और अन्य चैनलों पर सुना जा सकेगा। देश भर में आकाशवाणी की सभी 46 क्षेत्रीय समाचार इकाइयां अपने अपने राज्य की क्षेत्रीय भाषाओं में विशेष कार्यक्रम और समाचार बुलेटिन प्रस्तुत करेंगी। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु राज्यों को सूखा संबंधी परामर्श जारी कर उन्हें पानी का सोच समझकर उपयोग करने को कहा है। इन राज्यों में जलाशयों में पानी बहुत कम रह गया है। केंद्रीय जल आयोग के सदस्य SK हालदार ने बताया कि तमिलनाडु को इस बारे में कल सूचित किया गया, जबकि अन्य राज्यों को पिछले सप्ताह परामर्श जारी कर दिए गए थे। केंद्रीय जल आयोग देश भर के 91 बड़े जलाशयों के जल स्तर पर लगातार नजर रख रहा है। जारी आंकड़ों के अनुसार इन जलाशयों में इनके भंडारण क्षमता का केवल 22% जल बचा है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपुरा इलाके में आज तड़के सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। पंजगांव में सुरक्षा बलों के तलाशी अभियान और घेराबंदी के बाद गोलीबारी शुरू हुई। इस गांव में छिपे आतंकियों ने सैनिकों पर गोलियां चलाईं। राज्य के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि इस इलाके में 1 या 2 आतंकवादी छिपे हैं।
तराल के एरिया में वहां पर एनकाउंटर अर्ली मॉर्निंग शुरू हुआ था। इसमें 3 मिलिटेंट के होने की इत्तला थी, जिसमें अभी तक 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। दोनों की डेड बॉडीज मिल गई हैं। इसमें एक की पहचान भी होगी, शौकत अहमद डार करके मिलिटेंट है, जो उस एरिया का हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर है और बड़ा खूंखार आतंकी है। इसने बहुत सारी आतंकवादी गतिविधियां उस एरिया में करी है और लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। दूसरा ऑपरेशन इस वक्त अनंतनाग जिला में चल रहा है, उसमें भी खास इत्तला पे ये ऑपरेशन लॉन्च किया था। वहां पर कुछ मिलिटेंट्स के छुपे होने की इत्तला है।
भारत ने अफगानिस्तान में शांति, स्थिरता और आर्थिक विकास के लिए अपना पूरा समर्थन व्यक्त किया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के विशेष दूत और उच्च शांति परिषद के सचिव उमेर दाऊदजई को कल नई दिल्ली में यह आश्वासन दिया। उमेर दाऊदजई ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को अफगानिस्तान महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली सर्वोच्च महासभा लोया जिरगा की हाल की बैठक से अवगत कराया। दोनों पक्षों ने अफगानिस्तान में क्षेत्रीय शांति तथा शांति वार्ता और द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की भी समीक्षा की। ऑस्ट्रेलिया में नई संसद चुनने के लिए मतदान जारी है। निचले सदन के 150 और ऊपरी सदन के 76 सदस्यों के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के भाग्य का आज फैसला हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया विश्व का एकमात्र ऐसा लोकतंत्र है जिसमें कभी व्यवधान नहीं आया। इस देश में मतदान करना अनिवार्य है और वहां 1,65,00,000 मतदाता हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक दशक में देश के चौथे नेता को आपसी मतभेद के कारण त्यागपत्र देने के बाद वहां पहला आम चुनाव कराया जा रहा है। संसद का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, लेकिन 2007 से अब तक कोई भी प्रधानमंत्री अपना पूरा कार्यकाल नहीं कर पाया है। यूरोपीय संघ ने सीरिया के खिलाफ प्रतिबंध को और 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। राष्ट्रपति बशर असद के शासन वाले युद्धग्रस्त सीरिया में आम नागरिकों के खिलाफ लगातार हिंसा के कारण ऐसा किया गया है। कंपनियां और संगठनों सहित 70 संस्थाओं और लगभग 270 लोगों पर अगले वर्ष 1 जून तक प्रतिबंध जारी रहेंगे। इस दौरान उनकी परिसंपत्तियां भी जब्त रहेंगी। यूरोपीय संघ ने सीरिया पर तेल व्यापार तथा उन उपकरणों के व्यापार पर रोक लगा दी है जिनका इस्तेमाल नागरिकों के विरुद्ध किया जा सकता है। ओडिशा में पिछले एक सप्ताह से भीषण गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त है। विशेषकर पश्चिमी जिले तेज गर्मी की चपेट में हैं। राज्य के लगभग 10 स्थानों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चल रहा है। एक रिपोर्ट।
तितलागढ़ में कल पारा 45.5 डिग्री सेल्सियस, बोलांगीर में 44.6 डिग्री सेल्सियस और सोनेपुर में 44 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकांश पश्चिमी जिलों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। राज्य के विभिन्न भागों में कल गर्मी से 5 लोगों की मौत की खबर है। भुवनेश्वर मौसम कार्यालय ने अगले कुछ दिनों तक तापमान सामान्य से अधिक बने रहने और तटवर्ती क्षेत्रों में उमस का अनुमान व्यक्त किया है। संबलपुर से एसएन पटनायक की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से गौरव राघव।
बुद्ध पूर्णिमा आज देश के विभिन्न भागों में श्रद्धापूर्वक मनाई जा रही है। बिहार में मुख्य समारोह बोधगया में महाबोधि मंदिर में आयोजित किया गया है, जहां भगवान बुद्ध ने पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था।
जापान, श्रीलंका और इंडोनेशिया समेत अन्य देशों से बौद्ध धर्मावलंबी बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर बोधगया आए हुए हैं। सूर्योदय होने के साथ ही बुद्धम शरणम गच्छामि के गूंज से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। महाबोधि वृक्ष के नीचे सुबह विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। आकर्षक शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें श्रीलंका के कलाकारों ने भाग लिया। बुद्ध पूर्णिमा को देखते हुए महाबोधि मंदिर के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की 2 दिन की यात्रा पर आज सुबह देहरादून पहुंचे। प्रधानमंत्री आज केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे केदारपुरी में विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। प्रधानमंत्री दिल्ली लौटने से पहले कल बद्रीनाथ जाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
धन्यवाद लवलीन। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के प्रचार के कल समाप्त होने के बाद विभिन्न नेताओं के बयान अखबारों में अलग अलग शीर्षक से हैं। हिंदुस्तान की पहली खबर है, 78 दिन का शोर थमा, कल जनता करेगी आखिरी चोट। राष्ट्रीय सहारा की पहली खबर है, मैदान की लड़ाई खत्म, अब दावों की जंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना कि साध्वी प्रज्ञा को वह मन से कभी माफ नहीं कर पाएंगे, जनसत्ता सहित सभी अखबारों में है। शारदा चिटफंड घोटाले में कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार की गिरफ्तारी से रोक हटने को अमर उजाला सहित सभी अखबारों ने दिया है। पत्र ने उच्चतम न्यायालय के हवाले से लिखा है कि लाखों निवेशक हो रही हैं परेशान। केंद्र सरकार का ये फैसला कि स्विट्जरलैंड से मिली काले धन की जानकारी साझा नहीं की जाएगी, राजस्थान पत्रिका की खबर है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के 7वें अंतिम चरण के मतदान की तैयारियां पूरी। केंद्र ने सूखे की स्थिति पर महाराष्ट्र और तमिलनाडु सहित 6 राज्यों को परामर्श जारी किया। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। और भारत ने अफगानिस्तान में आर्थिक विकास और शांति प्रक्रिया को पूरा समर्थन दिया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।